गुरुदेव नमः। श्री चैतन्य मनोदीपं पपितां येन भूतले पाणि रूप कदा वाणीं निदर्शय पाठयन् सुखम् ओम विष्णु पदाय कृष्ण शिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी करणी मूल के सत्य वाणी His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj has asked me to begin the evening discourse, and we will speak from Srimad Bhagavatam, 6th canto, about the narration of Ajamiyo and the glories of the holy name of Krishna. The Srimad Bhagavatam is being discussed between Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit. And Sukadeva has just completed telling in the 5th canto about the punishment in the hellish planet given to sinful persons.
Srimad Bhagavatam Parikshit Maharaj tatha Sukadeva Goswami na samvad rupe chali rahyu chhe. Sukadeva Goswami e panchma khanda na ant ma narakni atma vate jivatma e bhogavi pade tenu vahan karyu chhe.
Now Maharaj Parikshit was not worried that he would go to hell. Because he was already a pure devotee, and he was hearing about Krishna in his last 7 days of life. But because the Vaishnava is compassionate, he was concerned for people in general. So he asked Sukadeva Goswami, how can the jivas avoid these hellish
planets?
Shri Sukadeva Goswami replied that they must perform prayaschitta or atonement for their sins. But Maharaj Parikshit thought that this answer was not the ultimate answer.
Maharaj Parikshit thought that this answer was अंतिम जवाब न हो सके।
So he said, by performing some pious chitta, the reaction to one sin may be removed, but that does not remove the desire to commit more sin.
परिषद महाराज ने प्रश्न करो कि प्रायश्चित की कदाच एक पाप में निराकरण कर सके पर हृदय में जो पाप करने की इच्छा से वो बीच से
So Sukadeva Goswami was actually testing his disciples, and he was pleased that Maharaj Parikshit was not satisfied with the answer that prayaschitta will remove sin.
Sukadeva Goswami pute Parikshit Maharaj ki kasoti kar raha tha ki Maharaj jawab mein santosh tha ki nahi hai. Jab Parikshit Maharaj santosh na ho, tab Sukadeva ji ghana udari thaya ki Parikshit Maharaj samre the અને એના જવાબ સંતોષ નથી એટલે આગળ અમે વધુ આગળ જણાવ્યું.
Sukadeva Goswami then mentioned many items of sadachar, good behavior, such as practicing brahmacharya and other austerities and accumulating knowledge of Vedanta.
Sukadeva Goswami ji ત્યારે સુરાચારની અનેક બીજી બધી વસ્તુઓ પણ સંભળાવી કે જે દ્વારા વ્યક્તિ પવિત્ર થઈ શકે અને એવું વેદાંતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે.
But Maharaj Parikshit was still doubtful whether there is time in life to prosecute all these many different activities which are difficult to perform.
પરંતુ પરિષદ મહારાજ ને પણ લાગી કે આ બધી પ્રવૃત્તિઓ તપસ્યા બ્રહ્મચર્ય વગેરે પ્રવૃત્તિઓ આ એક જીવનમાં આવરી શકાશે કે કેમ.
And whether this type of Vedic knowledge will actually permanently remove the tendency to commit sin.
અને આ પ્રકારનું વેદાંતનું જ્ઞાન પણ પાપ કરવાની વૃત્તિને સમગ્ર મૂળથી નાશ કરશે કે કેમ એ વિશે પણ શંકા છે.
So now Sukadeva Goswami was quite pleased and he gave the ultimate answer. He said, Te sit kevala vakya vasudeva parayana aham gandhanti kashmiya niha ramira vaskara. In this verse he said that only pure bhakti or devotional service to Krishna can remove all the sins. Just as if you want to remove weeds from a field, it is not sufficient to cut them down or they will grow up again.
જે રીતે આપણે ખેતર માંથી નિંદામણ કાઢવું હોય તો ઉપર ઉપરથી કાપવાથી અસર પડશે નહીં, પણ તેને જમીનમાંથી ઉકેળવો પડશે.
But you have to pull them up from their roots and burn them, then they'll never again appear.
પણ તેને મૂળમાંથી કાઢવું પડશે અને એને ફરગાવી દેવું પડશે તો એ ફરી પાછું ઉભું થશે નહીં, એમ નથી ઉગશે નહીં.
So the way bhakti works, niharami va bhaskara, it works just as the sun removes fog.
ભક્તિ એ રીતે કામ કરે છે જે રીતે સૂર્યોદય થતા ધુમ્મસ સૂર્યોદય થતા જે રીતે અદ્રશ્ય થાય છે એ રીતે ભક્તિનો ઉદય થતા પાપની વૃત્તિઓ છે એ સંપૂર્ણપણે નાશ થાય છે.
There is no way you can remove fog by many little vats or by any other scientific process.
માત્ર નાના દીવાઓ ફરકાવવાથી અંધારો દૂર થતો નથી, તે રીતે બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓથી આ પાપ થવાની દૂર થઈ શકે એમ નથી.
But when this one thing appears, the sun, at once all the darkness is gone.
પણ જ્યારે સૂર્યોદય થાય છે ત્યારે અંધારો સંપૂર્ણપણે નાશ પામે છે.
So similarly, Kechit Kevalya Bhakta, Vasudeva Parayana, by simply devotional service to Krishna, the whole thing is
accomplished.
Now to illustrate by a specific example how pure devotional service saves a sinful person from going to the hellish planet, Sukadeva will tell the story, the true history of a sinful person named Ajamil who was saved by chanting the holy name.
જે રીતે આ વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે એનું ઉદાહરણ આપવા માટે સુખદેવ ગોસ્વામીએ એક આખ્યાન કર્યું, અજામિલ નામના એક પાપી પુરુષનું આખ્યાન કર્યું અને કેવી રીતે ઉદ્ધાર થયો તે એમને સમજાવ્યું.
So there are many deep meanings in this story and they are of crucial concern for all of us.
આ આખ્યાનમાં ખૂબ ગુજરાતો રહેલા છે અને જે આપણા ગુજરાત માટે ખૂબ જ મહત્વના છે સમગ્ર માનવ જાત માટે, એટલા માટે આ આખ્યાન આપણે બહુ ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ.
I think all of you are sometimes chanting the Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare.
So we want to know how we can make full progress in this chanting, not only to overcome sinful life, but to attain pure love of Krishna.
તો આપણે બધા હંમેશા આ મંત્ર રટણ કરીએ છીએ તો આપણે ખૂબ ગંભીરતાથી આ નામ રટણનો સંપૂર્ણપણે લાભ કેવી રીતે ઉઠાવી શકાય, નામ રટણથી પૂર્ણ શુદ્ધિ અને પૂર્ણ ઉન્નતિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય એ સમજવું જોઈએ. માત્ર પાપ નિવૃત્તિ માટે જ નહીં, પરંતુ કૃષ્ણ ભગવાન નો પ્રેમ હૃદયમાં જગાવવા માટે આ આખ્યાન અને આ વિજ્ઞાન સમજવું ખૂબ જરૂરી છે.
So we are fortunate that Srila Narayan Maharaj has graced this temple tonight, and we will be able to hear from him all the ramifications of this important narration.
આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે પૂજ્યપાદ નારાયણ મહારાજ અહીં આગળ પધાર્યા છે અને તેઓ પણ આ આખ્યાન વિશે એના ગુજરાતમાં આપણને સમજાવશે.
So I will request him to speak. Thank you very much. Hare
Bancha-kalpa-tarubhyasya कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरक्तिषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय ભક્તાય નમો.
પહેલે શ્રીપાદ જસમતી નંદનજી એક કીર્તન કરને કે લીએ થે. પહેલે મેં કીર્તન કરતા થા, વિશેષ કરકે સ્વામીજી કે સાથ મેં જબ થા તો કીર્તન તો કરતા થા, गला भी ठीक था. अब कुछ परिणत उम्र में गला भी साथ नहीं देता, इसलिए वैसा तो कीर्तन नहीं कर सकता. तब थोड़ा सा इनके आग्रह के कारण एक बंगला का कीर्तन, जिसको जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही प्रिय है, विशेष करके रूप गोस्वामी के संबंध में वो कीर्तन है. हम लोग के आचार्यों ने कहा है कि जब तक कि रूप गोस्वामी के श्री चरण कमलों की धूली में हम नहीं लौटेंगे, उसके द्वारा अभिषिक्त नहीं होंगे, तो भक्ति का यथार्थ हम स्वरूप नहीं समझ सकते. ये महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय थे और कृष्ण लीला में रूप मंजरी इनका नाम था. यदि रूप गोस्वामी के चरणों में, रूप मंजरी के चरणों में हमारी श्रद्धा नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ सकेंगे. इसलिए हमारे सभी आचार्यों ने श्री रूप गोस्वामी की वंदना की है. श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सपदान्तम. चैतन्य महाप्रभु जी के हृदय के विचारों को, क्योंकि जगत में अवतीर्ण हुए थे, कृष्ण संग राधा जी के भाव को लेकर के महाप्रभु के रूप में जगत में अवतरित हुए. किस लिए अवतरित हुए थे कि कृष्ण लीला जब समाप्त हुई तो कृष्ण ने विचार किया कि मैं भक्ति क्या, मैं रस का समुद्र हूं, मैं कुछ रसास्वादन करने के लिए ब्रज में अवतीर्ण हुआ. नंद बाबा ने वात्सल्य के भाव से, यशोदा मैया ने, सखाओं ने सख्य रस से और गोपियों ने मधुर रस से मेरी सेवा की. लीला के अंत में वो विचार कर रहे हैं
मैं भक्तों को प्रेम करता हूँ, मैं भक्तों से स्नेह करता हूँ, भक्त लोग हमसे स्नेह करते हैं, कृष्ण भक्तों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, अब भक्त लोग कृष्ण से स्नेह करते हैं। जितने भी भक्त हैं उन भक्तों में हनुमान जी श्रेष्ठ है। उन हनुमान जी में भी से भी श्रेष्ठ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव है, क्योंकि हनुमान जी राम के चरणों की सेवा करते हैं, उनके लिए अपने को समर्पण कर रखा है, किंतु रामचंद्र जी के पलंग पर बैठकर गले में हाथ देकर गलबहियां देकर प्रेम नहीं कर सकते, नीचे बैठेंगे, हाथ जोड़ करके रहेंगे। वो रामचंद्र जी से हंसी दिलगी नहीं कर सकते, और इधर में अर्जुन इत्यादि कैसे हैं कि कभी नर जी को इच्छा हुई भगवत दर्शन की तो देखा जी एक पलंग पर सोए हैं कृष्ण, और दूसरी तरफ से उसी पलंग पर अर्जुन सोए हैं। इधर में यहां देख करके अर्जुन उसी पलंग पर सोए हैं, कृष्ण पलंग पर सोए हैं, अर्जुन का सिर कृष्ण के चरणों की ओर और कृष्ण का पैर अर्जुन के चरणों की तरफ। कृष्ण ने अर्जुन के श्री चरणों को अपने वस्त्रक्षल से लेकर और अपने हाथों से लबाए रखा, और अर्जुन ने भी कृष्ण का चरण अपने वस्त्रक्षल से लेकर अपने को दबाए रखा। कृष्ण के चरणों की तरफ में द्रौपदी जी, सुभद्रा जी खड़ी हैं, चमर डुला रही हैं, और अर्जुन के चरणों की तरफ में सप्तभामा, रुक्मिणी इत्यादि रानियां चमर डुला रही हैं, और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है, आंखों के आंसुओं की धारा गिर रही है। हनुमान ऐसा नहीं कर सकते, संभव पर नहीं होगी। इस हनुमान अर्जुन इत्यादि से भी लाखों गुना श्रेष्ठ उद्धव है। कृष्ण के सखा है, मंत्री हैं, सलाहकार हैं, सब कुछ है उनके साथ, साथ में सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और यदि अपना कहीं प्रतिनिधित्व करना कराना होता है, अपना प्रतिनिधि भेजना पड़ता है, माने अपने को जहां जाना होता है वहां वो उद्धव को भेजते हैं। गोपियों के यहाँ नंद बाबा को समझाने के लिए भेजना है, सांत्वना देने के लिए, तो उद्धव को भेजते हैं, और उद्धव जी गोपियों की चरण धूलने के लिए कहते हैं, आसाम हो चरण रंग साम। मैं यदि कहीं वृक्ष लता गुल्म ब्रज में हूं और गोपियां चल रही हैं, उनके चरणों की धूली यदि हमारे सिर पर यदि हो जाए, लग जाए, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जिसको श्रुतियां आज तक वेदों ने, श्रुतियों ने, बड़े बड़े लोगों ने उनके श्री चरण कमलों की धूली को प्राप्त नहीं कर सके, आज उद्धव जी के हृदय में लालसा जगी, उनकी चरण की धूली हो जाए। और इन गोपियों में जो चाहते हैं जिनकी चरण की धूली, उनमें सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधिका जी। राधिका जी उनका नाम हुआ, कृष्णेन आराधिता, कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं इसलिए उनका नाम राधिका हुआ, और राधा नाम इसलिए है जह कृष्णम आराधयति, कृष्ण की जो आराधना करते हैं ये राधा, और राधिका नाम हुआ कृष्णेन आराधिता। हरे कृष्ण जो नाम है उसमें जो पहला जो हरे कृष्ण है, हरे ये कृष्ण के चित्त को भी अपने परम प्रेममयी सेवा से, अपने परम सुंदर गुणों से कृष्ण के भी चित्त को हरण कर लेती हैं, इसलिए उनका नाम हरा है। इसलिए हरे कृष्ण माने राधा कृष्ण होता है, और हरे राम वाला में जो हरे राम देव और राम देखते हैं वो राधा जी के साथ में वो दासखी राम नहीं बैठेंगे, वो बैठेंगे कौन, राधा रमयति इति रामः, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वो गोविंद जो जो राम है वो राधा रमयति, राम राधा के साथ में जो आनंद अनुभव करते हैं वो यहाँ पर राम शब्द का है। तो समस्त लोगों में जो कृष्ण की प्रति विधान करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, उसमें राधिका जी सर्वश्रेष्ठ है। अब राधिका जी कृष्ण को प्रेम करती हैं, कृष्ण राधिका जी को जो प्रेम करते हैं, एक पलड़े पर रख दिया, पलड़ा समझते हैं तराजू का, हम समझते हैं गुजराती और हिंदी प्राय, हाँ वो समझ आप लोग समझ लेंगे। तो एक पलड़े पर कृष्ण का प्रेम जो राधा के प्रति है उसको एक तराजू के पलड़े पर रख दिया और दूसरे पलड़े पर रख दिया, राधा जी कृष्ण को प्यार करती है, प्रेम करती है, उस प्रेम को कौन प्रेम नीचा होगा कौन प्रेम ऊपर उठेगा, राधा जी कृष्ण को प्रेम करती हैं वो बहुत गंभीर और भारी है, कि कृष्ण राधा जी को प्यार करते हैं वो भार है, राधा जी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो बहुत भारी होता है, कृष्ण का प्रेम ऊपर उठ जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसलिए राधा जी का प्रेम एकनिष्ठ है, एकनिष्ठ माने एक कांगी है, केवल कृष्ण को वो प्रेम करती है, वो ठोस और अखंड है, और कृष्ण का जो प्रेम है राधा जी के तरफ में वो बहुनिष्ठ है, अर्थात कोटि कोटि लोग विश्व ब्रह्मांड में भक्त हैं, सबका के प्रति उनका प्रेम बटा हुआ है, राधा जी के भी प्रति बटा हुआ है, वो राधा जी के लिए किसी को छोड़ नहीं सकते, किंतु राधा जी सबको छोड़ देंगे कृष्ण के लिए, आ रहा है समझ में, इसलिए राधा जी का प्रेम बहुत ऊंचा है। कृष्ण ने सोचा राधा जी मुझे देख करके और हमारे मधुर भावों को, हमारा मधुर बंसी बजाना, हमारा इतना सुंदर रूप है, मधुर रूप है ना, लीला माधुरी बेणी माधुरी रूप माधुरी गुण माधुरी इतनी अधिक है, जगत मुग्ध हो जाता है, किंतु राधिका जी तो ऐसी मुग्ध हो जाती हैं कि उनको अर्थशास्त्रिक भी का रोमांच अर्थ पुलुक गदगद यहां तक ही मूर्छित हो जाती हैं, शरीर का होश नहीं होता, मुझे तो इतना होता नहीं उनको देख करके, इसलिए वो किस भाव से हमें देखती हैं, उनका राधा जी का प्रणय कृष्ण के प्रति प्रणय कैसा है, और प्रणय किसको कहते हैं ये व्याख्या करने लगे तो 10-15 घंटा इसी में निकल जाए, अब इसको साधारण रूप में से इसको प्रेम, राधा जी का हमारे प्रति प्रेम कैसा है, राधा या प्रणय महिमा कीदृशः कैसा है, और हमारे इन रूप को गुणों को देख करके वो कैसा उनको लगता है, और इसको करके उनको कैसा आनंद होता है, जिसे वो तन्मय होकर के शरीर की शुद्ध बुद्ध सब कुछ खो देती है, मूर्छित हो जाती है, कृष्ण उनकी गोदी में बैठे हैं, कृष्ण कहाँ है ऐसा खोजने लगती है, कभी कभी कृष्ण नहीं है और तमाल वृक्ष को गोदी में ले लिया और लेकर के और एकदम हंसने लगती है, उनसे बातचीत करने लगती है, मानो वो कृष्ण हो, ये सब कैसे होता है। इसलिए इस चीज को आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने राधा जी का भाव चुरा लिया और ऊपर से उनके अंग की कांति को चुरा करके महाप्रभु के रूप में वो जगत में पधारे, और इसी के बहाने प्रेम का आस्वादन करने के लिए राधा प्रेम का और जगत के जीवों को उसका एक कण मात्र देने के लिए भारतवर्ष में सर्वत्र ब्रह्मांड में सर्वत्र नाम दिया, साथ साथ में नाम के माध्यम से प्रेम दिया, कृष्ण का प्रेम दिया, वह प्रेम जिसको वो आस्वादन कर रहे थे उसमें थोड़ा सा कणिका का भाव वो देने के, इन दोनों प्रेम में कुछ विशेषता है वो समय अनुसार से पीछे बताएंगे। इस चीज को जब देने के लिए आए, अब देखिए थोड़ी सी एक महिमा मुझे, कभी चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास ले चुके हैं, बुद्धिमंत खान नाम का एक व्यक्ति थे, वो राजा थे इस जगह के, वो जब राजा थे तो उस समय अकबर का पीरियड था, अकबर का शासन का, समस्त भारतवर्ष में मुगल शासन चल रहा था। तो वो उनके अधीन में कुछ मुसलमान भी राजा थे बंगाल में उस समय। तो वो हुसैन शाह के एक कर्मचारी जैसे थे, बहुत बड़े भारी जमींदार राजा के रूप में। उनके यहाँ एक मुसलमान कर्मचारी था, उसका नाम था हुसैन शाह। तो बुद्धिमंत का नाम, उनका नाम सुबुद्धि राय था राजा का। तो वो वहां पर उनके अधीन में काम कर रहा था। एक दिन की बात है, उसको कुछ गांव सौंपे कि इसकी मालगुजारी तुम ले आओ, इकट्ठा करके मुझे दे। उसने लाखों रुपए वसूल किए और बात सुबुद्धि राय जी को अपने प्रभु को नहीं दिया, अपने आप खा गया। ऐसे कितनी बार वो किया और खाया, मालगुजारी इनको दिया नहीं। उन्होंने उसको बुलवाया, तो बड़ा बदमाश है, तुमको मैंने लगान या मालगुजारी लेने के लिए कहा, तुमने लिया नहीं, दिया नहीं मुझे, सब हड़प गया, खा गया तू, मैं तुम्हें दंड देता हूं। उनको तो चाहिए था ये मुसलमान कोई राजा होता तो साथ ही साथ में तलवार के घात उतार देता, किंतु बड़े दयालु थे, सोचा जाए इतने दिनों तक काम किया, थोड़ी सी गलती की है, कोई बात नहीं। कहा जाए ए कर्मचारी डराओ, इसे एक कोड़ा लगाओ। बस कोई आया और एक कोड़े जैसे घोड़े के लिए लगाते हैं बहुत जोर से उसे एक बार, साथ साथ में यहां पर फफोले उठ गए और चिकित्सा करके महाराज ने उसको ठीक भी करवा दिया, किंतु वो दाग रह गया। कुछ दिनों के बाद में आप लोगों ने औरंगजेब का या मुसलमान शासकों का वो सब सुना होगा, कैसे अपने बाप को भी मारकर, अपने भाइयों को मारकर, बहनों को मारकर के राजा होते हैं, ये सब तो इतिहास ही इसका साक्षी है। कुछ दिनों के बाद में धोखा देकर के जैसे तैसे वो महाराज बन गया, इनके ऊपर काफी बन गया। और उसने बेगम से शादी भी कर ली और राजा हुसैन शाह बन गया, जिसके यहाँ हमारे रूप सनातन जी नौकरी करते थे पहले, वो लोग उनके प्रधानमंत्री और प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वो बन गया। एक दिन उसकी बेगम उसे स्नान करा रही थी और स्नान करते 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 वो दाग देखा, अरे ये दाग कैसे हुआ पीछे में आप बतलाइए तो। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे ही हो गया। नहीं नहीं आप जरूर बतलाइए। वो बतला नहीं रहे थे और ये मानने नहीं थी बेगम। अंत में कहा उसने, यदि आप नहीं बतलाएंगे तो मैं आत्महत्या करूंगी, बीज खा लूंगी। अंत में बाध्य होकर के बतला दिया कि मैंने ऐसे कोई अपराध किया, क्षम्य, और महाराज ने दया करके हमको एक कोड़े लगवा करके बस छोड़ दिए और फिर हमें वो काम भी हमको दे दिया। अच्छा महाराज ने, वो आपके अभिन्न अपराध कर्मचारी है और उसने आपको ऐसे कोड़े मारा है, अच्छा आप उसका जल्दी से प्राण दीजिए, उसका वध करा दीजिए। नहीं मैं ऐसा नहीं करा सकता, नहीं तो कराना पड़ेगा किसी हाल। मैंने कहा भाई इतना मैं नहीं कर सकता, मैंने उसका अन्न खाया है, नमक खाया है, मैं इतना ही कर, हाँ ऐसा कर सकता हूँ कि उसको अपने बधने का पानी पिला दूं। और हिंदू लोग तो इतने डरपोक अपने धर्म भेरु होते हैं, जो मुसलमानों का छूट दिया या कोई खा लिया कुछ या उनका पानी पी लिया, बस वो लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको हम अपने बधने का पानी, लोटे का पानी मैं इसे पिला देता हूँ। ये कह करके उनको बुलाया और बुला करके उनको पानी पिला दिया अपने बदने का, जिसे वो पीते हैं। अब इन्होंने कहा तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो गई। उन लोगों ने भी, सब लोगों ने सुना कि अरे इसकी तो जाति भ्रष्ट हो गई, राज्य भी छोड़ दिए, घर भी छोड़ दिए, स्त्री पुत्र छोड़ करके अब तो मैं जाति भ्रष्ट मुसलमान बन गया, अब कैसे मेरा उद्धार होगा। उन्होंने काशी के पंडितों से पूछा, उन्होंने कहा जैसे हाँ एक प्रायश्चित है, जिस प्रायश्चित के द्वारा तुम शुद्ध हो सकते हो, वो है एक कड़ाही में तेल खौलता रहेगा, खौ खौलता रहेगा और उस तेल को लेकर के साथ ही साथ तुम्हारे मुख में भर दिया जाए तो तुम अने तुम मर जाओ। मिथिला में गए तो मिथिला वालों ने कहा हाँ एक उपाय है प्रायश्चित, इससे कम वाला कोई प्रायश्चित नहीं। ये प्रायश्चित है कि लोहे को गलाकर, और गला करके जब लाल हो जाए, जब तरल हो जाए, तो तुम्हारे मुख में ढाल दिया जाए, तुम पवित्र हो। ये प्रायश्चित है। तो ये मरने के बाद मरना ही हो गया, बल्कि ऐसे मरना एक बात थी, और ऐसा तड़पता हुआ वो मरेगा तो सही बड़ा भारी मुश्किल है। वो रोता कलपता किसी प्रकार से सुना कि महाप्रभु इसी रास्ते से जा रहे हैं वृंदावन में, रास्ते में आकर के उनके चरणों में गिर गया। नहीं क्यों रोते हो? वो कहा कि भाई हमको तो काशी के, मिथिला के और समस्त भारत के बड़े बड़े पंडित विद्वान संस्कृतज्ञ हैं, वेद वेदांत को जानते हैं, उन लोगों ने कहा जिसे तुम तो जाति से भ्रष्ट हो गए, इसलिए तुम्हारे मुख में ऐसा दिया जाएगा तब तुम शुद्ध हो। मैंने बिना प्राण गए अभी इस जन्म में इससे शुद्धि ही नहीं है। अब आप कृपा करके बतलाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं अपना हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहता। अब आप कोई यदि उपाय बतलाएं, आपके ऊपर में मेरा पूर्ण विश्वास है, आप जो कह देंगे मैं मान लूंगा। उन्होंने कहा एक बात कर, अभी तुम बोलो कृष्ण कृष्ण, एक बात तुम बोलो, बस इसी से तुम्हारा सब शुद्धि हो जाएगी। पूर्व जन्म की, इस जन्म की, भूतकाल की, वर्तमान काल के और भविष्य में जो तुम पाप करेगा वो सब एक कृष्ण नाम के द्वारा ही। तुम वृंदावन जाना और वहां पर भगवान कृष्ण का जन्म स्थली में एक मंदिर है, मंदिर में वैष्णव लोग आएंगे, उनके चरणों की धूलि को ग्रहण करते रहना सब समय, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। बस तुमको और कोई शुद्धि की अब कोई भी जरूरत नहीं है, बस वो मुक्त हो गए और उनकी चरणों की धूलि लेकर के कृष्ण कृष्ण कहते हुए वृंदावन में चले गए। और जो कया तो और इतिहास की बात है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी के इस विषय की और जो आस्वादन किया और कृष्ण प्रेम जो दिया भारत के इतिहास में या विश्व के किसी इतिहास में, ये सब चीजें इतने सरल रूप में, सहज रूप में कृष्ण का जो ये दिया प्रेम और जगत में नाम का प्रचार किया, आज चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके परिकरों ने विश्व के कोने कोने में ऐसा कोई नगर ग्राम इत्यादि नहीं है जहाँ हरे कृष्ण मूवमेंट न हो और महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण को न जानते हो। बल्कि हम लोग जितना नहीं जानते, यहाँ का रहने वाले हिंदू ब्राह्मण कहलाने वाले भी जो सदाचार संपन्न होकर के मांस मछली प्याज लहसुन गंदी बातें यह सब छोड़ करके गले में तुलसी की माला लेकर तिलक यहाँ लगाकर शुद्ध रूप में गुरु पदाश्रय करके भजन हम नहीं कर पाते, कुछ दुर्बलताओं के कारण पश्चात देशों में जो कि ऐश्वर्य की उच्च से उच्च भूमि पर अवस्थित और वो सब लोग उन्हें तृण की भांति सबको छोड़ करके हाथ उठा करके स्त्री किशोर किशोरियां जिनको लज्जा आती है बहुत किशोरियों को, वो लोग भी सब कुछ छोड़ करके तिलक लगा करके गले में माला पहन करके और अपने वेशभूषा को छोड़ करके हमारे भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने को सब प्रकार से ढाल कर और कैसा हरिनाम करते हैं एक चित्र, हाँ वहां पर देखे कैसा चित्र हुआ इसे सभी लोग। तो इस तरह से हम लोग जो नहीं करते वो लोग करते। तो ये रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के समस्त भावनाओं को और प्रेम किसे कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, महाप्रभु जी किस लिए आए हैं, वृंदावन क्या चीज है, गोपियां क्या वस्तु हैं, भगवत प्रेम भी किसको कहते हैं, कैसे वो ला किया जा सकता है, इन चीजों को चैतन्य महाप्रभु जी ने कृपा करके रूप गोस्वामी के हृदय में प्रस्फुट किया था। और चैतन्य महाप्रभु के इन भावों को रूप गोस्वामी ने सरल सरल शब्दों में भक्ति दशा में सिंधु उज्ज्वल मणि विदग्ध माधव ललित माधव अलंकार इत्यादि समस्त पुस्तकों में गागर में सागर की तरफ में तरफ सब प्रेमों को भर दिया है। इतना सुंदर उनका ये उस रूप गोस्वामी के लिए एक कीर्तन है, मैं कीर्तन थोड़ा सा करके और फिर समय रहेगा तो कुछ नाम के संबंध में अजामिल उपाख्यान के संबंध में उन्होंने कहा उसमें बहुत सी विशेष बातें हैं उसके तरफ में हम दो चार शब्द मैं कहूंगा। अभी थोड़ा सा ये कीर्तन बंगला का है किंतु हम लोगों के लिए हृदय का ही है। प्राण स्वरूप ये कीर्तन है, केवल हमारे लिए नहीं, हमारे संप्रदाय के जितने भी शुद्ध वैष्णव हैं वो सब करते हैं। तो आप लोग जो नहीं कर सकते हैं तो भी सुनेंगे, जो करने वाले हैं वो लोग दोहरा सकते हैं। ये हमारे प्रभुपाद जी हैं, भक्ति वेदांत स्वामी जी हमको पुनः पुनः कहते थे ये आप ये कीर्तन जरा हमको सुनाइए। विशेष करके अंतिम समय में जबकि वो परलोक गमन कर रहे थे, बिस्तरे पर थे, मैंने उनको बड़े प्रेम से ये कीर्तन सुनाया था। तो अब तो गला नहीं, इसलिए मैं जैसे तैसे टूटे फूटे गले से भी मैं इसको गा रहा हूं। सिरूप मंजरी पदा से मोरा संपदा, सिरूप मंजरी पदा से मोरा संपदा, से मोरा भजन पूजन, से मोरा भजन पूजन, से मोरा प्राण धन, से मोरा आभरण, से मोरा সিদ্ধি তে মর বেদে ধরাম, তে মর বেদে ধরাম, সে বত সে সে মর মন্ত্র জপ, সে ব্রত সেই তপ, সে মর মন্ত্র জপ, সে মর ধরাম করাম, বয়ে দুই গয়ানে নিরাখি, বয়ে দুই গয়ানে সে রূপ মাধুরী রাখি প্রাণ কো বদায় সসি, সে রূপ মাধুরী রাখি প্রাণ কো প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে, তুয়ায় দর্শনায়হি গরলে জারাল দেহি, তুয়ায় দর্শনায়হি কিরতিন কাটি সপরান, প্রভু কর দয়া দেহ মরে পদ ছায়া, প্রভু কর इसका थोड़े से भाव सारांश में ये है, नरोत्तम ठाकुर जी वैष्णव संप्रदाय के बड़े ही परम सिद्ध महात्मा थे। वो रूप गोस्वामी के लिए, रूपमंजरी के लिए कह रहे हैं, और रूप गोस्वामी जी के जो चरण कमल है, रूपमंजरी के जो चरण कमल है, उनकी पदधूलि ही मेरी एकमात्र संपत्ति है, वही मेरे लिए पूज्य है, वही मेरे लिए आराध्य है, यहाँ तक कि प्राणों का प्राण, जीवों का भी जीवन और जीवन का भी मूल चीज वो रूप गोस्वामी की चरण की धूलि है, वही मेरे लिए रसनिधि है और वही मेरे लिए वांछा है कि जब भी मर मर करके कहीं हूं, कहीं भी मेरा जन्म हो, तो रूप मंजरी के चरण कमलों की धूलि का मैं सेवन कर सकूं, ऐसा मुझे चाहिए। मैं तीन लता गुण भी हूं तो भी रूप गोस्वामी के, रूप मंजरी के चरण कमलों की मैं आराधना कर सकूं, हमारे जीवन की वांछा, हमारे जीवन की सिद्धि, हमारा सर्वस्व जो कुछ है रूप गोस्वामी। क्यों? इसलिए कृष्ण की, राधा जी की बड़ी प्यारी है ये, जितनी सखियां हैं उन सब में ये राधा जी की विशेष प्यारी है। ललिता विशाखा से उनको किसी विषय में लज्जा हो सकती है, किंतु इनसे कोई भी लज्जा की बात नहीं होती है। इसलिए मेरा व्रत, मेरा तप, मेरा मंत्र जप, मेरा सर्वस्व धर्म कर्म जो कुछ है रूप गोस्वामी की चरण की धूलि है। यदि विधाता हमारे अनुकूल हो, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तो बस यही हमको यही वरदान दें कि रूप गोस्वामी की चरण धूलि सेवा करने का मुझे सुयोग मिल सके। बस विधाता से यही मेरी एक प्रार्थना है, मैं उनके शिव चरण कमलों का दर्शन करना चाहता हूँ। और रूप गोस्वामी, आपके दर्शन के बिना मैं मर रहा हूं, मैं छटपट कर रहा हूं, जैसे किसी को सांप काट ले, वही तुम्हारा अदर्शन, अतः तुम्हारा नहीं दर्शन नहीं होना, ये मेरे लिए सर्प के समान है, मुझे वो विषधर सर्प काटता है, मैं जीवित नहीं रह पाता, इसलिए जल्दी से मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं अभी मरा, अभी मरा। हा हा प्रभु कर दया, हे रूप गोस्वामी हमारे ऊपर में आप दया की कृपा की वर्षा दीजिए, नहीं वर्षा हो एक कहीं कण भी यदि उसका लग जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए, ये वो कीर्तन कर। अब थोड़ा सा एक दो मिनट का कीर्तन करके तब फिर अपना वक्तव्य। राधे 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 जय 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 श्री राधे, सभी बोलिए
राधे 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 जय जय
राधे, राधे राधे जय 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 श्री राधे,
राधे 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 जय 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 श्री राधे,
राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे
राधे रमन हरि गोविंद जय जय,
राधा रमन हरि गोविंद जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
राधा रमन हरि गोविंद जय जय,
राधा रमन हरि गोविंद जय जय,
राधे 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 जय जय श्री राधे,
राधे राधे